चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 68। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम्, गुणरयण भूषणुदयम्, जीवस्य परुवणम् उच्चम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 221 पर आ गए हैं। पर्याप्ति प्ररूपणा का जो अधिकार है, उसमें शुरू में ही यहाँ संख्या मान की चर्चा करते हुए जघन्य परिता संख्यात कितना होता है उसकी बात यहाँ उठाई है। हमने देखा है कि चार समान कुंड करने लाख योजन चौड़े यानी डायमीटर वाले व्यास वाले और हजार योजन ऊंडे, और फिर उसको पहले का नाम है अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। अनवस्था कुंड की ये खासियत है कि वो बढ़ते हुए साइज के होते चले जाएंगे, बाकी कुंड तो उतने साइज के ही रहेंगे। करना क्या है कि पहले में पहला जो अनवस्था कुंड है उसको सिघाऊ भर देना सरसों से। जब भरता है तो एक सरसों शलाका कुंड में डालने, और जो भरा है उसमें से एक 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 सरसों लेके जम्बूद्वीप से लेकर एक द्वीप में, एक समुद्र में, एक द्वीप में समुद्र, एक द्वीप में समुद्र में डालनी। जहाँ सब समाप्त होती है उस द्वीप या समुद्र प्रमाण, वहाँ जो उसकी जो सूची होगी, सूची हमने देखा आउटर डायमीटर, बाहरी तट सामने सामने वाले, हाँ तो उसका जो व्यास होता है इस तट से लेकर उस तट तक, उसको सूची कहते हैं। उस प्रमाण दो नंबर का अनवस्था कुंड करना, फिर वो सिघाऊ भरना, भरते तब दो नंबर की सरसों शलाका में डालनी, ये दूसरा कुंड हुआ। अब उसकी सरसों वहां से आगे डालते चले जाना। तो जो जिस द्वीप या समुद्र में गिरती है उसका प्रमाण कैसे निकालना, तो पहले में पहले जितनी सरसों है उतनी बार लाख योजन को दो गुना दो गुना दो गुना करते जाओ। तो हम मान लेते x पहले में x हुए थे, तो 2^x इतने लाख आते हैं। वो तो उसका विस्तार हुआ एक बाजू का, उसको चौगुना करके 300,000 योजन माइनस करो तो उसका सूची का प्रमाण मिलता है। अब जब दूसरे अनवस्था कुंड उसकी सरसों समाप्त तो होती है, तो पहले और दूसरे में जितनी थी सरसों उतनी बार लाख योजन को दुगुना दुगुना करना, तो हमें उसका विस्तार मिलेगा एक बाजू का। उसको 4 गुना करके 300,000 योजन माइनस कर दो तो वहां की सूची मिलेगी। यही फॉर्मूला आगे भी चलेगा। जब जब एक बार अनवस्था कुंड पूरा भर देते हम, तो शलाका कुंड में एक एक सरसों डालनी है, और जो भरा हुआ कुंड है उसमें से एक एक सरसों आगे के द्वीप समुद्रों में डालते जाना है। इस तरह से शलाका कुंड भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने हो गए, तो हमने शुरू में जो 1-9 आदि जो संख्या देखी है 40 अंक प्रमाण, तो उतने यहाँ पर कुंड हो गए। कौन से? अनवस्था कुंड हो गए। तब शलाका कुंड एक बार भर जाता है। शलाका कुंड एक बार भरता है तो हमने एक सरसों प्रति शलाका में डालनी है। तो प्रति शलाका में एक डाल ली हमने, तो शलाका को खाली करना, और जो अनवस्था भरा था तो उसके सरसों आगे तक डालते जाना, फिर उसी मेथड से, और एक नौ आधी बार ये हो जाएंगे तो शलाका कुंड दूसरी बार भर जाएगा, तो प्रति शलाका में दूसरी सरसों डालेंगे। इसी पद्धति से हम आगे बढ़ेंगे तो प्रति शलाका पूर्ण भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने होते हैं, तो एक नौ आदि जो संख्या देखी उसके वर्ग प्रमाण होते हैं अनवस्था कुंड।
ये तो केवल अनवस्था कुंड का नंबर बता रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है हर समय अनवस्था कुंड की मतलब जो साइज है वो बड़ा 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 ही होते जा रहे हैं,
डायमीटर बहुत बढ़ गया।
हाँ, यानी उसमें अधिक राई बैठेगी, सरसों जिसको हम कह रहे हैं, और वो उतने द्वीप समुद्र आगे 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 आगे, यानी ये समझना कि हम जो जम्बू द्वीप में हैं उधर से कितने द्वीप समुद्र होंगे, ऐसा थोड़ा विचार करें ना आगे।
तो जब प्रतिशला का पूर्ण भरने के लिए हमने कितने देखे, हाँ छह स्क्वायर, तो प्रतिशला का पूर्ण भर जाए तो एक शलाका हम महाशलाका में डालें, एक सरसों शलाका ने एक सरसों, फिर दूसरी बार प्रति शलाका भर जाए तो फिर एक सरसों, तीसरी बार, इस तरह से जो महाशलाका कुंड है, आओ बेन, महाशलाका कुंड भरने के लिए, महाशलाका कुंड भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने हो गए, तो एक नौ आदि जो हमने देखी है संख्या उसके घन प्रमाण हो गए, उसके घन संख्या प्रमाण अनवस्था कुंड हो गए, तब महाशलाका कुंड भर जाएगा। तो जब अभी क्या पोजीशन है, लास्ट वाला अनवस्था भी भर गया, शलाका भी भर गया, प्रतिशलाका भी और महाशलाका भी। अब उस कुंड में जितनी सरसों आती है वह प्रमाण है जगन्य परिता संख्यात का। ये जगन्य परिता संख्यात प्रमाण सरसों उस अंत में अंतिम अनवस्था कुंड में आते, उसका नंबर कितना है, एक नौ आदि जो संख्या देखी थी उसका घन करो, इतने अनवस्था कुंड चले जाते हैं आगे आगे वाले बड़ी सूची वाले होते हैं, तो उसमें जितनी सरसों आती उसका प्रमाण है जगन्य परिता संख्यात। हम यहाँ जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण कितना है उसको देख रहे थे, ये तो हमने कल देख लिया है।
यहाँ पर एक बात होगी ना कि आखिर में जो महाशला का कुंड है वो पूरा पूरा भर जावे, दैट इज जगन्य परिता संघ,
उसको नहीं, वो जब भर जाता है। हाँ। तो उस टाइम जो अनवस्था कुंड है अच्छा। उसमें जितनी सरसों भरी है वो परिता संघ, क्ष घन तो अनवस्था कुंडों की संख्या हुई, उसमें तो लास्ट वाला जो अनवस्था कुंड है उसमें कितनी सरसों आएगी उसको सिघाऊ भरना। हाँ,
क्योंकि वो मैक्सिमम बड़ा अनवस्था कुंड होगा।
हाँ
बरोबर।
कौन सा अभी वो जो वो नहीं, अभी तो हमें 46 का घन प्रमाण तो अनवस्था कुंड हुए है। हाँ हाँ वो तो सूची हुई। हाँ उसको इंटू फोर करना, इंटू फोर करके वो आपने कर दिया, इंटू फोर करके वो माइनस थ्री कर दिए आपने, परंतु वो तो साइज हुआ। हाँ नहीं मिलेगा। हाँ देखो क्यों नहीं, आपका ऐसा प्रश्न है, हम ये बात करते हैं कि लाख योजन चौड़ा था हमारा पहले और ऊंडाई तो समान ही, अभी उसका कितने हम मान लेते 4 लाख योजन हो गया, तो तो क्या चार गुना सरसों आएगी उसमें? लाख, देखो ये लाख योजन का था, अब ये 4 लाख की है मान लेते हम,
यानी इमीडिएटली दो के बाद, मतलब एक का दो, दो का चार,
हम ये मानने के लिए ऐसा लेते हैं, कोई 1 लाख योजन डायमीटर वाला कोई और 1000 योजन उंडा हमने कोई खड्डा किया और वो सिगाव से भरा
46 अंक,
और ये लाख 4 लाख हमने सिगाव से भरा, क्या 4 गुना ही उसमें होगी क्या ज्यादा होगी? क्योंकि डायमीटर 4 गुना हो गया, उसका क्षेत्रफल, उसका घनफल कितने ज्यादा होगा? क्योंकि घनफल और फिर उसमें सरसों कितने आएगी, वो केवल 4 गुना नहीं जाएगी, ज्यादा होगी।
और हम तो वहाँ कितनी बार जा रहे हैं,
क्योंकि चार गुना तो डायमीटर 4 गुना हुआ है। क्षेत्रफल निकालना है, हाँ निकाल सकते हैं, तो वो जितने गुना होगा, नहीं उसमें एक कम करो तो उत्कृष्ट संख्या ही होगा, क्योंकि ये अंतिम है, उत्कृष्ट संख्यात में एक ज्यादा हो जाती है वहां पर सरसों, चल में आती है, क्योंकि वो एक्स का प्रमाण भी हमने कितना बड़ा लिया है और फिर उसमें सरसों की जो संख्या है वो कितनी बढ़ती गई है आगे आगे। आखिर सूची का प्रमाण ऐसा ही निकालना, कितने बार हमने अनवस्था कुंड किए हैं, 19 आदि जो संख्या है उसके घन प्रमाण किए हैं, तो उतने घन प्रमाण जो संख्या है तो 2:2 उतना करो, इतने तो लाख योजन उसकी एक बाजू की चौड़ाई होगी, उसको 4 गुना करो और 3 माइनस करो तो आउटर सूची मिलेगी, तो ये सूची मिली, 1000 योजन तो उंडा है ही है, अब उसमें कितने सरसों आएगी, ये उसका प्रमाण बहुत ज्यादा आता है, केवल उतने गुना नहीं आता।
हाँ। ये आपने 4 गुना करने की बात की है, तो 4 गुना क्यों करना?
हाँ, देखो हमने क्या देखा है, 4 गुना क्यों करना, किसी भी हमने जितनी सूची निकाली है, सूची का पहले जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, उसके आगे लवण समुद्र 2 लाख योजन, 2 लाख योजन उसके एक बाजू के विस्तार है, उसको पूरा आउटर डायमीटर नहीं है, पूरा आउटर डायमीटर निकालना है तो कितना होगा, सेंटर से यहाँ 2.5 लाख और यहाँ 2.5 लाख, यानी ऐसा तो 5 लाख योजन उसका डायमीटर में, यानी उसकी सूची 5 लाख योजन होती है, बराबर है ना? अभी उसके आगे का देखते हैं, धात के खंड कितना है, ये 2 लाख है तो वो 4 लाख योजन, एक बाजू 4 लाख योजन है, तो उसके दोनों ओर कितना होगा, तो हमने पहले देखा था ये जम्बूद्वीप, ये धात की खंड, ये सॉरी लवण समुद्र और फिर धात की खंड, ये 2 लाख, ये 4 लाख और यहाँ हाफ है, उतना ही यहाँ ले लो, 13 लाख है ना, तो अभी हम अपने सूत्र से निकालते हैं, 4 को 4 गुना करो 16 होते हैं, उसमें से 3 लाख माइनस करो 13, तो किसी भी समुद्र की या द्वीप की हमें एक बाजू की चौड़ाई पता है तो हमें पूरा निकाल सकते हैं हम। ये तो उसका साइज, उसका डायमीटर, सूची में सूची निकलेगी, उसकी सूची निकलेगी, तो सूची इतनी बड़ी है। हाँ, क्योंकि हमने कितने हम आगे चले गए, कुंड कितने बनाए हमने, इतने उतने नहीं, ये तो कुंड हो गए आपके, नहीं आप फिर भी मैं मिसलीड हो गई, देखो नहीं
आपका नहीं,
हाँ आउटर डायमीटर मैंने, हाँ नहीं नहीं है क्योंकि हाँ अभी अभी देखो
उन्होंने क्या
अभी अभी मुझे उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो कोई एक्स क्यूब जो हमने निकाला है अनवस्था कुंडों की संख्या, तो उतनी बार 2 लाख डबल 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 कर दो, लाख को डबल डबल कर दो। तो जैसे हमने कहीं पर सूत्र निकाला था कि हमें विस्तार पता हो तो उसको 4 से गुणा करो और 3 लाख माइनस करो, तो क्या यहाँ पर भी ये सूत्र होगा कि 2 रेस टू वो 19 वाला घन वो एक बाजू का विस्तार हो जाएगा और फिर उसको 4 गुणा करके 3 माइनस करो। तो मैंने बोला पहले तो हाँ हाँ कह दिया क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर गई। अभी तो ये बात है किसका कितने नहीं हाँ अभी मैं कारण बताती हूँ उसका। अब हमने क्या देखा था, जब पहली बार अनवस्था कुंड किया था तो उसमें संख्या कितनी आई थी, सरसों की संख्या तो 19 आधी संख्या 40 हाँ, तब हम 2 रेस टू उसको हम क्ष किया था, उसको क्ष लिखते हैं ना 2 रेस टू क्ष, ये किसकी जितने क्ष तो सरसों की संख्या है, तो उतने आगे हम उतने द्वीप समुद्र आगे गए। अब दूसरे नंबर का अनवस्था कुंड किया तो दूसरे नंबर के अनवस्था कुंड में सरसों कितनी माई हाँ, तो क्ष प्लस अभी दूसरे अनवस्था कुंड में यह प्रमाण संख्या थी क्ष प्लस यह, तो हम 2 रेस टू क्ष प्लस यह चलेंगे यहाँ पर, उसकी सरसों की संख्या निकालनी। अब हम आखिरी में क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं ना हर एक की संख्या कितनी बढ़ रही है, पहले दूसरे तीसरे चौथे हर अनवस्था कुंड में जितनी सरसों थी उतना रेस टू करना रुको। क्योंकि क्या है, पहला कुंड में इतनी सरसों, दूसरे कुंड में इतनी, तीसरे में इतनी सरसों, इन सब की टोटल करते जाओ तो अनवस्था कुंड ही कितने हुए हैं, क्ष के क्यूब यानी घन प्रमाण इतने अनवस्था कुंड हुए हैं, उतनी बार सरसों की संख्या कितनी बढ़ती गई है, उन सब की टोटल करो। पहले अनवस्था कुंड की सरसों प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की प्लस चौथे की प्लस पांचवी की प्लस वो अंतिम की, और 2 रेस टू उतना करो तो हमें उस द्वीप या समुद्र का एक बाजू का विस्तार मिलेगा। ये तो विस्तार में ही वहां पर, अभी हम फिर उसकी सूची निकालना उसमें सरसों और कितनी आएगी, यानी वो पहले वाला जो सूत्र का वो तो कुंडों का था नहीं हाँ नहीं नहीं निकाल सकते
क्योंकि असंख्यात मति श्रुते
नहीं कुंड तो संख्यात हो गए हाँ, कुंड संख्यात हो गए
हाँ, लेकिन उसमें सरसों
कुंड तो संख्यात है ना, 19 के घन प्रमाण कुंड हुए हैं 19 आदि के घन प्रमाण कुंड तो उतने हो गए। अब उसके लाख हमने जो कोई किया उसका विस्तार निकालो उसको इतना, वो अंतिम कुंड इतना बड़ा होता है कि उसमें कितने सरसों आएगी
वो असंख्या थे,
सरसों की संख्या हम नहीं निकाल रहे हैं।
और अब मैं,
हम कुंडों की संख्या निकाल
ये बताना चाहता हूँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वह असंख्यात का प्रमाण नहीं जान सकता है, तो आगम के मार्फत जाने, लेकिन जैसा हमने 10 रुपए 10 बोले तो 10 का हमें भाव भाषण होता है, वैसे करोड़ बोले या उसका स्क्वायर बोले जो भी बोले तो हमें ज्ञान में आता है, लेकिन ये अवधि ज्ञानी ही असंख्यात को जानेगा और केवल ज्ञानी ही अनंत को जानेगा, ये पहले हमारे मन में नक्की रखो। और यहाँ हमने देखा कि आखिर वाला जो अपना कुंड होगा जो अटमोस्ट लास्ट जो है वो, उसमें जो सरसों रहेंगे वो जघन्य परीक्षा संख्या, जो आपके मन में था ना संख्यात हो सकेंगे क्या कुंड
हाँ क्योंकि वहाँ हाँ
कोई
वो तो
नहीं।
उसकी संख्या निकाली हमने, कुंडों की संख्या तो संख्या थी है, संख्या थी है बिल्कुल हाँ। देखो आपका जो प्रश्न था ना यहाँ हम 221 को ऊपर से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर। देखो पहले और दूसरे कुंड में जितनी सरसों समाई, जब हम दूसरा अनवस्था कुंड भरा और फिर दूसरे अनवस्था कुंड की हमने सरसों डालते गए हम, तो जहां समाप्त हुई तो उस कुंड में उस कुंड का विस्तार कितना है, विस्तार वो सरसों कितनी है वो तो और अलग बात है, या कितनी सरसों उसमें आती है उसका तो क्षेत्रफल कैसे निकालना वो तो त्रिलोक सार में जो मेथड है उसके आधार से, हम तो यहाँ केवल कुंड का विस्तार कितना है उसको देख रहे हैं। तो उस कुंड का विस्तार कितना है वो यहाँ बता रहे हैं। देखो पहले और दूसरे कुंड में जितनी सरसों समाई, यानी उनकी टोटल करना, पहले में अभी बहुत बड़ी संख्या होगी क्योंकि इतने हम कुंड आगे चले गए हैं, तो उसका विस्तार कितना बड़ा होगा। हमने केवल वो 15वें नंबर का देखा था नंदीश्वर द्वीप, उसकी सूची कितनी लंबी चौड़ी निकली थी, 85 - 3 लाख, तो ये कितने इतने 19 आदि जो संख्या है, तो उतने द्वीप और समुद्र आगे चले जाएंगे हम तो वहां की सूची कितनी बड़ी होगी और उसमें सरसों कितने आएंगे। तो पहले वाले सरसों और इन सरसों उसकी टोटल करना और फिर उतनी बार लाख योजन को दुगुना करना, तो उस द्वीप का एक बाजू का हमें विस्तार मिलेगा, उसको 4 गुना करना और 3 लाख योजन घटाना तो हमें उसकी सूची मिलेगी। ये तो सूची का प्रमाण है। फिर उसमें सरसों और कितनी आएगी ज्यादा, यानी 2 बार करते फिर भी हमारे इमेजिनेशन के बाहर चली जाती है बात।
देखो मेरे पिताजी ने एक बात मुझे समझाई थी, वो बोले तुझे अमीर बनना है, मैंने कहा हाँ साहब, अरे उसके सिवा और क्या कर सकता हूँ मैं, तो रोज 1 पैसा पहले दिन 1 पैसा सेव करने का, दूसरे दिन उसके डबल, तीसरे दिन उसके डबल, चौथे दिन उसके डबल, तो 1 महीने में कितना पैसा तू सेव करेगा वो मुझे गणित बता दो तो अमीर हो जाएगा। यानी 30 बार भी हमें डबल करना है ना, एक एक से चालू करते हुए भी, यहाँ भी 1 लाख है तो अभी हम तो कितने सरसों आगे एक 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 द्वीप समुद्र में जा रहे हैं, वो उतनी बार 2 लिखना बोले तो अपने बस की
2 बात। 2 गुना करते जाना है ना, दुगुना दुगुना दुगुना
डबल करना है ना, 2 गुना 2 गुना करते जाना।
हाँ 16 अर्धच पन्नठी का अर्धच्छेद 16 है और उसके आगे वाला बादल जो है उसका अर्धच्छेद 32 है, यानी मान लेते ना 30 टाइम तो करते तो बादल प्रमाण हो जाएगा, यानी 42 लाख आदि कुछ संख्या आ जाएगी।
वो आएगी आगे, उस समय मालूम नहीं था ना ये।
देखो देखो ये पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे हम। पहले और दूसरे कुंड में जितनी सरसों समाई, सरसों की संख्या देख रहे, उतनी बार लाख योजन को दुगुना दुगुना करके जो प्रमाण आता है उसको 4 गुना करके 3 लाख योजन घटाते हैं, तब तीसरे अनवस्था कुंड के व्यास का प्रमाण आता है। व्यास है ना एक बाजू का विस्तार, नहीं वो आउटर सूची की बात आती है, अनवस्था कुंड का व्यास यानी वो सूची उसकी। पुनश्च पहले दूसरे और तीसरे अनवस्था कुंडों में सब में मिलकर जितनी सरसों समाई है उतनी बार लाख योजन को दुगुना दुगुना करके जो प्रमाण आता है उसको 4 गुना करके 3 लाख योजन घटाने पर चौथे अनवस्था कुंड के व्यास का प्रमाण आता है। अब हमें वो अंतिम अनवस्था कुंड का व्यास निकालना है, तो 19 आदि जो संख्या है उसके घन प्रमाण तो अनवस्था कुंड हुए। उस हरे कुंड में जितनी जितनी सरसों आई थी उस सबकी टोटल करना, उतनी बार लाख योजन को दुगुना दुगुना करना, तो संख्या कितनी कहां तक चली जाती है। वो तो आया उसका एक बाजू का विस्तार, उसको 4 गुना करो और 3 लाख योजन माइनस करो, तो लाख योजन की बात चल रही, इतने लाख योजन वो अनवस्था कुंड अंतिम हुआ तो फिर उसको सिगाऊ भर देना सरसों से, तो उसमें जितनी सरसों आती है वो है जघन्य परिता, वो भी जघन्य में जघन्य असंख्यात है। यहाँ लिखा ना, इस तरह से बढ़ता हुआ व्यास का प्रमाण अंतिम अनवस्था कुंड पर्यंत जानना, वहां जो अंतिम अनवस्था कुंड हुआ उसमें जितना सरसों का प्रमाण होता है उतना जघन्य परिता संख्यात का प्रमाण जानना। ये सबसे छोटे में छोटे असंख्यात है। हमने असंख्यात के तीन भेद देखे थे, सरला बेन आपको याद है? हाँ, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। ये अ उसमें संधि आ गई ना, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात, उसमें से ये परिता संख्यात में से जघन्य में जघन्य संख्या है ये। देखो यहां से अभी फिर पढ़ेंगे, कल पढ़ा था फिर भी जहां अभी हमने रुके ना वहां से लास्ट पैराग्राफ। यहां शलाका कुंड में एक सरसों डालने पर एक अनवस्था कुंड होता है, तो शलाका कुंड में एक नौ आदि अंक प्रमाण सरसों डालने पर कितने अनवस्था कुंड होते हैं? शलाका कुंड ने दो नंबर का कुंड, उसमें एक सरसों कब डालते हैं? जब एक अनवस्था कुंड भरता है तो एक, दो भरते तो दो, तीन भरते तो तीन, तो हमारे पास क्ष नंबर सरसों आती है, तो उतनी शलाका में भरने के लिए क्ष बार अनवस्था कुंड करने पड़ेंगे। उसको एक नौ आदि संख्या कही थी, बिल्कुल। स्क्वायर कहां की बात? क्ष नहीं स्क्वायर किया, अभी क्ष ही रखा है। प्रति शलाका भरने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। शलाका एक बार, शलाका कुंड एक बार भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने हो गए? बढ़ते हुए व्यास के ही लेनी है, वही तो मूल यह जो है ना मर्म उसका यहीं पर है। अनवस्था कुंडों के साइज तो हर बार बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते हुए साइज के अनवस्था कुंड कितने हो गए? तो क्ष बार हो गए, एक नौ आदि जो संख्या बार हो गए, तब जाके शलाका कुंड एक बार भरेगा, तब हम एक सरसों प्रति शलाका में डालेंगे। फिर पढ़ते हैं, देखो यहाँ शलाका कुंड में एक सरसों डालने पर एक अनवस्था कुंड होता है, तो शलाका कुंड में एक नौ आदि अंक प्रमाण सरसों डालने पर कितने अनवस्था कुंड होते हैं?
एक रुपए में एक नींबू, तो दस रुपए में कितने? वही है,
वही है। इसको कहते हैं त्रैराशिक। तो हमने एक सरसों के लिए एक अनवस्था कुंड देखा, तो एक सरसों उसको कहेंगे प्रमाण राशि, एक अनवस्था कुंड होता है उसको कहेंगे फल राशि। अभी हमें कितने चाहिए? एक नौ आदि संख्या प्रमाण सरसों चाहिए शलाका में, वो हमारी इच्छा राशि, वही संख्या आने वाली उतने कुंड, तो जो आएगी संख्या उसको हम क्या कहेंगे? लब्ध, लब्ध कहो या लब्ध राशि कहो। तो ऐसा करने पर प्रमाण राशि एक, फल राशि एक, एक सरसों एक कुंड, इच्छा राशि एक नौ अंक प्रमाण। देखो उसको ब्रैकेट में मैंने वो संदृष्टि लिख दी है, यहाँ मूल में तो संदृष्टि अधिकार में लिखा है, पर हमारे समझ में आए ये उसकी साइन है। कैसे? 19 और आगे इज इक्वल टू की साइन लिखेंगे, इसका अर्थ होता है वो 19 आदि, यानी एक नौ आदि जो बड़ी संख्या है, 46 अंक प्रमाण, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से जैसे पनट है ना 65536, उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 65 आदि, ये शॉर्ट फॉर्म है। इकट्ठी लिखना है, इकट्ठ तो 18 आदि, ये उसकी संदृष्टि होती है।
बादल भी बताओ।
अच्छा बादल जो है पनट्टी का वर्ग, तो बादल है ना 42 आदि, ये है, इसको संदृष्टि कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म।
अभी यहाँ
शॉर्ट फॉर्म को या उसका जो कोई
साइन,
साइन उसकी चिन्ह,
ये पहले पनट पहले पनट्ठी आएगी, बाद में बादल आएगा
और फिर
इकट्ठी आएगी।
पनट्ठी का वर्ग बादल, बादल का वर्ग इकट्ठी, ये तो बाद में आने वाली संख्या है।
नहीं,
ये तो
अभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
हाँ, इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं आप लिख रहे हैं ना, इसलिए
देखो, ये पनट्ठी जो है वो 10 अंक प्रमाण है,
ये पनट्ठी है 10 डिजिट वाली है।
और बादल जो 42 से चालू होता है वह
नहीं, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट वाली है,
ये 10 डिजिट,
ये 10 डिजिट वाली है और ये 20 डिजिट वाली,
20 डिजिट वाली।
65536 तो 5 डिजिट आए ना उसमें, मैंने भूल से 10 कहा
और मैंने 10 कहा, है 5।
दस अंक प्रमाण है और इकट्ठी 20 अंक प्रमाण है। ये प्रमाण राशि किसे कहना, समझ में आई बात? हम जो त्रैराशिक स्कूल में सीखे थे, क्या एक रुपए का एक नींबू तो 19 रुपए के कितने मिलेंगे, इसको क्या कहते हैं? ये है प्रमाण राशि। हम ऐसे साइन कहते हैं बिकॉज और फिर देयरफॉर। ये साइन लिखते थे कि नहीं, आपको याद है कि नहीं? ये क्योंकि, हाँ क्योंकि, हाँ और देयरफॉर, यानी इसलिए, ऐसा कहते थे ना स्कूल में। अभी एक में एक तो 19 में कितने, तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में पहला ऊपर लिखते हैं, यह है प्रमाण राशि, यह है फल राशि राइट साइड में। नीचे जिसकी वैल्यू निकालनी है हमको, उसको कहेंगे इच्छा राशि। हम उसका इच्छा हम निकालना चाहते हैं ना, तो ये इच्छा राशि, और जो आएगा उसको कहेंगे लब्ध राशि। तो ऐसा त्रैराशिक करने पर प्रमाण राशि एक, फल राशि एक, इच्छा राशि 19 आदि अंक प्रमाण, हमारे गणित में अभी हम ऐसा लिखेंगे 19 आदि अंक प्रमाण, ये ख्याल में है, ये ऐसा लिखेंगे हम वहां। अभी ये कैसे सॉल्व करते हम, तो ये फल राशि और इच्छा राशि को गुणा करते हैं और ऊपर प्रमाण राशि से भाग देते हैं, ऐसे करते हैं ना, 19 गुना 1 डिवाइडेड बाय 1। अभी यदि हम यहाँ 2 लिखते, 2 रुपए का 1 लिखते, तो 2 से भाग देते हैं उसको, 19 गुना 1 भाग देंगे 2 का, वहां फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर लब्ध राशि 19 आदि अंक प्रमाण होती है। यहाँ क्या प्रश्न पूछा था, शला का कुंड जब भर जाता है 19 आदि सरसों से, तो कितने अनवस्था कुंड होते हैं? तो उतने ही हो गए, एक के लिए एक तो 19 आदि जो है 19 आदि के लिए उतने ही अनवस्था कुंड हो गए, ये हमें उत्तर मिला। हमने उसको क्ष माना था, तो क्ष सरसों से शला का कुंड भर गया है, तब अनवस्था कुंड कितने हुए? तो क्ष बार हुए, क्ष हुए। यहां तक बात ख्याल में आई? अब आगे, पुनश्च प्रतिशलाका कुंड में एक सरसों डालने पर, यानी जब शलाका कुंड पूर्ण भर गया है तभी हम प्रतिशलाका में एक सरसों डालते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रतिशलाका में एक सरसों डालने के लिए अनवस्था कुंड कितने हुए? एक नौ आदि, यही हमने देखा था। शला का पूर्ण भरने के लिए भी 19 आदि प्रमाण होते हैं, और तभी हमने प्रतिशलाका में एक डाली। तो प्रतिशलाका में एक सरसों पड़ती है तो कितने होते हैं? क्ष बार होते हैं, 19 आदि बार होते हैं अनवस्था कुंड। तो उसमें 19 आदि बार होने के लिए कितने हो गए? देखो ऐसा है, अभी प्रतिशलाका में, अभी प्रतिशलाका में एक सरसों पड़ती है तो अनवस्था कुंड कितने होते हैं नलिन भाई? कितने हो गए उन्होंने बताया, इसलिए एक नौ अंक, हाँ, इतने अनवस्था कुंड हो गए, अनवस्था कुंड। क्या कहा, प्रति शलाका में एक सरसो डलती है तब अनवस्था कुंड एक नौ आदि प्रमाण होते हैं, बराबर। अभी प्रति शलाका भरने के लिए इसमें एक नौ आदि प्रमाण सरसो डालने के लिए कितने हो गए, अभी क्या करेंगे इसको, इसको इससे गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने इसको अगर क्ष कहेंगे तो क्ष वर्ग हो जाएगा, यानी 19 आदि जो है एक नौ आदि मल्टीप्लाइड बाय एक नौ आदि, है दो क्ष नहीं, दो क्ष यानी 19 प्लस 19 हो जाएगा, गुणा करना है, क्ष को क्ष से गुणा करते तो क्ष रेज टू 2 यानी क्ष वर्ग होता है। देखो चार को चार से गुणा करते तो 16 होता है, और चार में चार मिलाएंगे तो 8 ही हो गए, 16 में 16 मिलाएंगे तो 32 हो गए, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 है, फर्क है ना, हाँ। ख्याल में आती है बात, एक नौ आदि आदि प्रमाण होते हैं अनवस्था कुंडों की संख्या, तो प्रतिशला का भरने के लिए कितने हो गए उसके वर्ग प्रमाण हो गए, प्रमाण स्क्वायर नहीं, उतने स्क्वायर प्रमाण, हाँ। आप कहीं भी शब्द इकड़ का इधर का इधर का उधर लगा दो तो अर्थ बदल जाता है। देखो अभी हम पढ़ेंगे इसको, ये तो यहाँ से अपना विषय आज का प्रारंभ होता है, हाँ? पुनश्च प्रतिशला का कुंड में एक सरसो डालने पर एक नौ आदि प्रमाण अनवस्था कुंड होते हैं, तो प्रतिशला का कुंड में एक नौ आदि अंक प्रमाण सरसो डालने पर, यानी देखो प्रतिशला का में एक सरसो, तब अनवस्था कुंड कितने होते, एक नौ आदि अनवस्था कुंड, इसलिए प्रतिशलाका में एक नौ आदि सरसों डालने के लिए अनवस्था कुंड उसका वर्ग प्रमाण हो गए, यानी एक नौ आदि को एक नौ आदि से गुणा करने हैं, सरसों डालने पर 222 पृष्ठ पर आते अभी हम, कितने होते हैं ये त्रैराशि ख्याल में आया बेट दिव्याबेन, प्रतिशलाका हमने, हमारे पास चार कुंड है, देखो आप नहीं थे ना, इसका नाम है पहला अनवस्था कुंड, ये शलाका कुंड, ये प्रतिशलाका कुंड और ये महाशलाका कुंड, जब एक बार पूर्ण भर जाता है तो इसमें एक सरसो डालते हैं, एक सरसो डालेंगे, फिर ये एम्प्टी करेंगे हम, एक द्वीप समुद्र में डालते जाएंगे, आगे वाला बड़ा करेंगे तो इसमें वो फिर भरेंगे तो यहाँ दूसरी सरसो डालेगी, तो जितनी बार ये है एक नौ आदि बार ये कुंड हो गए तब ये एक बार पूर्ण भर जाएगा, तब जाके हम एक सरसो इसमें डालेंगे प्रतिशलाका में, तो प्रतिशलाका में एक सरसो डालने के लिए अनवस्था कुंड एक नौ आदि बार होते हैं, और इसमें एक नौ आदि बार तो सरसों डलती है, यानी एक बार ही ये फूल हुआ तब यहाँ एक पड़ी, तो इसको 19 आदि बार जो है पूरी संख्या प्रमाण, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके इसमें एक ही डलेगी महाशलाका में, ये बात ख्याल में आती है। पुनश्च महाशलाका कुंड में एक सरसो डालने पर, अब यही बात है, अब इक्वेशन ऐसे करना, ये महाशलाका में एक डाली तो प्रतिशलाका फुल हुआ तभी तो एक डाली, तो प्रतिशलाका फुल होने के लिए अभी हमने क्या देखा था, एक नौ आदि को हमने स्क्वायर किया था, तो इसमें एक डलने के लिए 19 का स्क्वायर, 19 आदि का स्क्वायर किया, तो इसमें 19 डलने के लिए कितना करना पड़ेगा, हाँ किसका? हाँ, एक नौ का घना। तो अभी हम त्रैराशी कैसा लिखेंगे? महाशलाका में एक सरसों डालने के लिए, जो हमने प्रतिशलाका फुल करने के लिए देखा था ना क्ष का वर्ग, तो महाशलाका में एक सरसों डालने के लिए एक नौ आदि का वर्ग प्रमाण अनवस्था कुंड हुए थे। तो एक नौ आदि प्रमाण सरसों डालने के लिए क्या होगा? तो वर्ग को इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा?
घन।
क्या होगा? नहीं समझे? अभी ये 19 के बदले हम यहाँ 4 लिखते हैं। ये 4 का वर्ग प्रमाण था यहाँ, और यहाँ 4 लिखेंगे तो क्या होगा? अभी 4 का वर्ग गुना 4 क्या होगा? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 को 64, 4 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 64। 64 ये 4 का क्या है? घन है। देखो ये 4 का वर्ग था ना, 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 था, उसका और एक बार 4 से गुणा किया, तो 4 को आपस में 3 बार गुणा किया, 4 गुना 4 गुना 4, इसको क्या कहते हैं? 4 घन, 4 का घन।
क्यूब।
यानी यहाँ 4 का स्क्वायर था ना, 4:2 था, उसको एक बार और एक 4 से गुणा किया तो 4 का घन आया। अभी हमारे पास क्या है? एक नौ आदि संख्या है, उसका वर्ग था, और यहाँ पर भी एक नौ आदि संख्या हमने लिखी है, तो क्या होगा? एक नौ आदि संख्या का घन होगा। ये किसकी संख्या है? एक नौ आदि का घन ये किसकी संख्या है? यहाँ हमने क्या लिखे है? महाशलाका में एक सरसों डलने के लिए अनवस्था कुंडों का प्रमाण कितना है? एक नौ आदि का वर्ग। तो महाशलाका में एक नौ आदि प्रमाण सरसों डलने के लिए कितने अनवस्था कुंड हो गए? तो एक नौ आदि का घन। यहाँ एक नौ आदि का घन ये संख्या आएगी। ये इस तरह से त्रैराशिक होगा। वीरेश भाई कुछ ख्याल में आती है बात? लिख लेना इस आप बाजू में। ये महाशलाका कुंड में एक सरसों डालने पर है ना 222 पृष्ठ पर, तो वहां महाशलाका में एक सरसों, तो अनवस्था कुंड कितने होते हैं? नौ आदि के वर्ग प्रमाण एक नौ आदि के वर्ग प्रमाण अनवस्था कुंड। इसलिए हाँ, महाशलाका में एक नौ आदि सरसों डालने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो एक नौ आदि का घन प्रमाण अनवस्था कुंड हो गए। जय बहन ख्याल में आई बात? अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। पुनश्च महाशलाका कुंड में एक सरसों डालने पर अनवस्था कुंड एक नौ आदि अंकों के वर्ग प्रमाण होते हैं। हमने देखे थे ना प्रतिशलाका भरने के लिए, तभी तो एक शला सरसों यहाँ डली। तो महाशलाका कुंड में एक नौ आदि अंक प्रमाण सरसों डालने पर कितने अनवस्था कुंड होते हैं? क्योंकि हमें महाशलाका पूर्ण भरने तक ये प्रोसेस करना था। ऐसा त्रैराशिक करने पर प्रमाण एक यानी प्रमाण राशि एक यहाँ लिखी ना हमने, महाशलाका में एक सरसों, ये हमारी प्रमाण राशि। फल राशि एक नौ आदि का वर्ग, ये जो इसका वर्ग हमने लिखा है। इच्छा एक नौ आदि राशि, और लब्ध राशि एक नौ आदि अंकों के घन प्रमाण होती है। एक नौ का घन। सो इतने अनवस्था कुंड होते हैं, ये कुंडों का प्रमाण है, सरसों का नहीं। ऐसा अनवस्था कुंडों का प्रमाण जानना, और इतने बार लाख योजन को दुगुना नहीं करना है, इन सभी अनवस्था कुंडों में जितनी जितनी सरसों आई थी वो हर एक की टोटल करना, उतनी बार लाख योजन को दुगुना दुगुना करना, उसको 4 गुना करके 3 लाख योजन माइनस करना, तो अंतिम सूची का प्रमाण आएगा। सो इतने अवस्था अनवस्था कुंड होते ऐसा अनवस्था कुंडों का प्रमाण जानना। पुनश्च एक्चुअली यहाँ तक ही विषय है, पुनश्च लिखते हैं वहां से नया वो विषय शुरू करते हैं। ये यहाँ तक बात समझ में, अंतिम अनवस्था कुंड में जितने सरसों आती है समाती है ढेर करके, वो प्रमाण किसका है? जगन्य परिता संख्यात का है। पुनश्च जगन्य परिता संख्यात के ऊपर एक एक अधिक के क्रम से, अब ये सारे भेद क्या कहलाए गए? जगन्य परिता संख्यात प्लस एक उसको क्या कहेंगे? हाँ, मध्यम परिता संख्या प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, कहाँ तक? उत्कृष्ट में एक कम तक, फिर हम उसको कहेंगे उत्कृष्ट परिता संख्या। उत्कृष्ट परिता संख्या में और एक मिला दो क्या होगा? मिला दो, उत्कृष्ट में और एक ऐड करो तो क्या होगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जघन्य युक्त आगे वाला लेना है ना, जघन्य युक्ता संख्यात का प्रमाण आएगा, जो हमने बहुत बार सुना है एक आवली में इतने समय होते हैं। तो अभी उसको बताएंगे यहाँ पर।
देखो अभी हम यहाँ देख रहे हैं जघन्य परिता संख्यात को देखते देखते अपने को एक ही बात बहुत बार समझनी पड़ी, अभी युक्ता संख्यात में कितने समय है वो भी समझ लेना, और ऐसी एक सेकंड में हजारों आवली होती है तो एक समय कितना सूक्ष्म होगा। और हम तो बड़ा बोलते हम इतने बिल्कुल टाइम टू टाइम काम करते हैं, टाइम टू टाइम काय का तो ट बोले जब तक तो असंख्य समझ जाते।
हाँ तो इतने ये तो हो गया, जघन्य परिता संख्यात के ऊपर ऊपर ने उसके अधिक अधिक करता करते जाना, एक एक अधिक के क्रम से एक कम उत्कृष्ट परिता संख्या तक। एक कम क्यों कहा? क्योंकि हमको मध्यम के भेद देखने हैं, तो उत्कृष्ट वाला हमें अलग रखें, तो उत्कृष्ट में से एक कम करो तो वो भी मध्यम परिता संख्यात का अंतिम भेद होगा। जैसे हमें 100 तक 100 वाला हमारा उत्कृष्ट हो तो 99 तक हम मध्यम के भेद कहेंगे, तो एक कम उत्कृष्ट परिता संख्यात तक मध्यम परिता संख्यात के भेद जानने। पुनश्च एक कम जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण उत्कृष्ट परिता संख्यात जानना। उत्कृष्ट परिता संख्यात कितना होता है? तो जघन्य युक्ता संख्यात में एक कम, एक संख्या कम। अब जघन्य युक्ता संख्यात का प्रमाण कहते हैं, मिली भाई नहीं है उनको ये सुनना था ना, जघन्य परिता संख्यात का विरलन करना। जब पहली बार सुना हमने पढ़ा था तो ये विरलन क्या होता है कुछ नहीं समझते थे। अभी तो हमने बहुत बार उसकी चर्चा भी करते हैं ना, विरलन करना यानी क्या? उसको बिखेर देना एक एक में, विरलन करना। यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ आगे, जघन्य परिता संख्यात का विरलन करना। विरलन क्या है उसको समझाते हैं पहले में, जितना उसका प्रमाण है उतने ही एक एक करके अलग अलग स्थापन करना। ब्रैकेट में लिखा है अपनी भाषा में मैंने, जैसे चार का विरलन करना हो तो चार बार एक एक लिखना। देखो कोई कहेगा चार का विरलन करो तो हम चार को एक एक में बिखेर देंगे, नहीं वो चार देंगे उसको देय राशि कहेंगे। विरलन करना इतना ही है, विरलन करने ने एक एक में बिखेर देना, सेपरेट सेपरेट एक 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 करके लिख देना। हमारी राशि चार है तो चार का विरलन करो कहेंगे तो एक 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 चार बार लिखना, इतना ही विरलन का अर्थ होता है।
देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना, वहाँ क्या लिखे, चार का यानी प्रमाण जो है अंक का प्रमाण जो है उतने ही बार विरलन करना है, यानी चार अगर हमारा प्रमाण है अभी तो एक एक चार बार ही लिखना, ना तीन बार लिखना ना पांच बार लिखना। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, जितना उसका प्रमाण है उतने ही एक एक करके अलग अलग स्थापन करना, यानी उसे ना अधिक न कम होंगे, चार यानी चार बार ही एक एक लिखेंगे।
हाँ। अभी हमें क्या, हम क्या देख रहे थे अभी, हमने जगन्य परिता संख्या तभी भी देख लिया था ना, तो उसका विरलन करना तो एक 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 जगन्य परिता संख्या हम जप लिखेंगे, जप जप बाद में, क्योंकि उसमें तो वो देय राशि है, अभी तो हमने विरलन की है, हमने अभी देय राशि की बात नहीं उठाई है ना, वो जप एक के माथे पर लिखेंगे जप, उसको देय राशि कहेंगे, ये तो विरलन राशि हुई हमारी, विरलन राशि जैसे हमने चार को एक एक में बिखेर दिया, ये तो चार संख्या हमारी विरलन राशि है, बाद में हम हर एक के माथे पर चार चार लिखेंगे एक एक पर, इसको हम देय राशि कहेंगे और फिर उसका आपस में गुणा करेंगे। वैसे ही यहाँ क्या करना है, पहले में पहले एक 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 कितनी बार लिखना है, एक एक जगन्य परिता संख्यात बार, और अब क्या करना, हर एक एक ज के ऊपर, सॉरी एक एक के ऊपर जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्यात लिख दो। कितनी बार जगन्य परिता संख्यात लिखना पड़ेगा, जगन्य परिता संख्यात बार, बाद में क्या करना, उसको आपस में गुणा करना, जैसे चार को हमने चार बार आपस में गुणा किया तो क्या होगा, 4 raised to 4, उसको कैसे लिखते हैं, 4 घातांक 4, इसको घातांक कहते हैं। ऐसे ही अपनी भाषा में लिखना है तो जप है ना, जगन्य परिता संख्यात रेस्ट टू जगन्य परिता संख्यात, तो जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात बार लिखो और आपस में गुणा करो तो क्या होगा, जगन्य युक्ता संख्यात की संख्या आएगी। पढ़ेंगे देखो हम यहाँ पर, देखो यहाँ तो विरलन करके अलग अलग स्थापन करना ब्रैकेट में हमने पढ़ लिया था, अब आगे पुनश्च एक एक की जगह एक एक जगन्य परिता संख्यात मांड कर, इसको कहते देय राशि, पहले जो होती थी वो विरलन राशि, और हमारी उदेय राशि भी उतनी ही है, तो हर एक 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 के माथे पर हमने जगन्य परिता संख्यात लिखा है तो उसको कहेंगे हम ये हमारी देय राशि है, वो दी ना एक एक को दे दी हमने, और फिर आपस में गुणा करना, तो एक एक की जगह एक एक जगन्य परिता संख्यात मानकर पश्चात सभी को परस्पर गुणित करना, यानी उतनी बार आपस में गुणा करना, एक बार दो बार आपस में गुणा करेंगे ना, ये पहली दो तो वर्ग हो जाएगा, और एक बार गुणा करेंगे तो घन होगा, ये 4 raised to 4 raised to 5 raised to, इस तरह से, अर्थात पहले जगन्य परिता संख्यात को दूसरे परिता संख्यात से गुणा करना, जो प्रमाण आए उसे तीसरे जगन्य परिता संख्यात से गुणा करना, पुनश्च जो प्रमाण आए उसे चौथे जगन्य परिता संख्यात से गुणा करना, ऐसे अंत तक परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आता है वह प्रमाण जगन्य युक्ता संख्यात का जानना। हमने वो जगन्य परिता संख्यात एक लिया तो उसका प्रमाण देखते देखते पसीना छूट गया, उसका वर्ग करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, अब यहाँ तो उतनी बार उसको आपस में गुणा करना, इसी को अंक संदृष्टि द्वारा दिखाते हैं, छोटी संख्या लेकर यहाँ समझाना चाहते हैं। देखो पंडित टोरलमल जी की विशेषता है, हर बार अंक संदृष्टि में छोटी संख्या लेकर हमें ये विरलन क्या है, देय क्या है वो समझाया है। जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण चार मान लिया है, चार, इसका विरलन करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, एक एक को चार बार लिखा हमने, एक एक स्थान प्रति चार दिए, दिए उसको कहेंगे देय राशि, दिए नहीं लिखे, हर एक के ऊपर चार चार लिख दिए, हाँ, और परस्पर गुणा किया तब कितने हो गए, 256। देखो यहाँ लिखा है, एक 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 चार बार लिखा, और हर एक एक के ऊपर कितना लिखा है, चार चार चार। इसी तरह जानना, इसी जघन्य युक्ता संख्यात का नाम आवली है। जब हम कहते ना इतनी आवली है, आवली प्लस एक समय, ये तो जघन्य अंतर्मूर्त कहलाता है। हाँ, तो इसका नाम है आवली, क्योंकि एक आवली के समय जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण है। एक आवली में इतने समय होते हैं, या इतने समयों की एक आवली कही जाती है। जैसे 60 सेकंड का एक मिनट कहते हैं हम, वैसे जघन्य युक्ता संख्यात समयों का उसकी एक आवली होती है। पुनश्च इसके ऊपर, अरे अब हम रुकेंगे यहीं पर। हाँ, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर इसको दोबारा कल पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक एक से बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट युक्ता संख्यात पर्यंत मध्यम युक्ता संख्यात के भेद जानने, और एक कम जघन्य असंख्याता संख्यात प्रमाण उत्कृष्ट युक्ता संख्यात जानना, इसकी चर्चा हम कल और करेंगे दोबारा। जावाणी के ज्ञान ते